ठीक है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
निरंतरा श्रीमद् भगवद गीता थारू अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या 17 है ना, श्लोक संख्या 17 पृष्ठ संख्या 94।
विनाशितो तन विद्धि येन सर्वं इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चिन् कर्तुमर्हति।
जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आप
ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
कौन कह रहे हैं अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, तू का मतलब है किंतु, किंतु अविनाशी तो उसको जानो जिसके द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है। इदम इदम का अर्थ यह है, लेकिन यहाँ पर यह का मतलब क्या है, शरीर जिसके द्वारा ये पूरा शरीर व्याप्त है। जबकि कुछ लोग इसका अर्थ निकालते हैं संसार, पूरा संसार व्याप्त है, लेकिन यहाँ पर भगवान पूरे संसार की बात नहीं कर रहे हैं। इदम का मतलब शरीर, कि शरीर व्याप्त है। ये न सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य, तो इस अविनाशी का विनाश करने में न कश्चित कर्तुम अर्हति कोई भी समर्थ नहीं है, कोई विनाश नहीं कर सकता। अच्छा अब आगे तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं हम सुनेंगे। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है, अधिक स्पष्ट वर्णन इसके पिछले श्लोकों से आज के श्लोक में ज्यादा स्पष्ट वर्णन हुआ है, क्योंकि इसके पहले भगवान ने बताया जरूर था, जैसे कि 13वां श्लोक है उसमें भगवान ने बताया था कि अंतरदेह की प्राप्ति होती है, दूसरा शरीर प्राप्त होता है ना, लेकिन आज के श्लोक में ज्यादा स्पष्ट है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं अविनाशी। देह के अंदर जो देही है वो अविनाशी है, और फिर भगवान ने क्या कहा कि अविनाशी तो है लेकिन शायद कोई इसका नाश करे, कर सकता हो शायद, कोई चीज अगर नष्ट नहीं हो रही है तो कोई व्यक्ति नष्ट कर देता है, ऐसा भी होता है कभी कभी है? अपने आप कोई चीज अगर नष्ट नहीं हो रही है और दूसरा व्यक्ति अगर नष्ट करे तो हो सकता है नष्ट हो जाए, है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए ये करताल है, अपने आप तो नष्ट नहीं होता है, फिर कोई व्यक्ति इसको आग में जला करके और ठोक पीट करके अगर नष्ट करना चाहे तो इसको नष्ट कर सकता है। तो भगवान ये बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति सोचे कि ठीक है जीवात्मा अविनाशी है, अपने आप को नष्ट नहीं होता, लेकिन शायद कोई व्यक्ति इसको नष्ट कर दे किसी उपाय से, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उपाय से इस जीवात्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। तो ये ज्यादा स्पष्ट वर्णन है। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। अब यहां पर समझना है कि शरीर में व्याप्त क्या है, चेतना है, आत्मा नहीं है। यद्यपि भगवान कह रहे हैं कि जिसके द्वारा ये संपूर्ण शरीर व्याप्त है उसको अविनाशी समझो जीवात्मा, लेकिन ये सबको समझना चाहिए कि जो जीवात्मा है वो पूरे शरीर में व्याप्त नहीं है, जीवात्मा तो हृदय में है परमात्मा के साथ। और आप जानते हैं कितना छोटा जीवात्मा का आकार है, बाल के नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर है। तो वो उसके द्वारा तो व्याप्त नहीं पूरा शरीर, वो तो बहुत छोटा आकार का है, लेकिन उसकी चेतना व्याप्त है पूरे शरीर में। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर व्याप्त है, इसको समझना चाहिए कि कहने का मतलब क्या है। कभी कभी कहा कुछ जाता है और कहने का मतलब कुछ दूसरा होता है, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि भाई द्वारका समुद्र के अंदर बसी थी, है कि नहीं? समुद्र के अंदर बसी थी, तो कोई सोची समुद्र के अंदर बसी थी तो क्या समुद्र के अंदर पानी के अंदर बसी थी, तो कुछ जो है पता नहीं चलता ना समुद्र के अंदर बसी थी, समुद्र के ऊपर थी द्वारका, समुद्र के बीच में थी, समुद्र के ऊपर थी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि द्वारका समुद्र के अंदर थी, है ना? उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये न सर्वम इदम तदम, जिसके द्वारा ये संपूर्ण शरीर व्याप्त है। लेकिन यहाँ समझना चाहिए कि जिसके द्वारा ये संपूर्ण शरीर प्रभावित है, यहाँ पर व्याप्त होने का मतलब है प्रभावित करना। ये जो जीवात्मा है ये तो भी बहुत छोटा है, लेकिन पूरे शरीर को प्रभावित कर रहा है, कैसे? अपनी चेतना के द्वारा, है ना? तो ये मतलब है। आगे प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, है? अब चेतना व्याप्त है पूरे शरीर में, ये कैसे पता? अगर कोई व्यक्ति माली नोचे, आपकी उंगली को नोचता है, आपके सिर को नोचता है, तो आपको लगता है, इससे पता चलता है कि आपकी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। हाँ, कुछ हिस्सों में चेतना व्याप्त नहीं है, जैसे नाखून, उंगलियों के नाखून जो बड़े होते हैं उनमें नहीं है, अंदर के नाखून में है चेतना, है? लेकिन जो आगे निकल आते हैं नाखून उनमें चेतना नहीं होती। बालों में चेतना नहीं है, बाल काटे जाते हैं तो आपको दर्द नहीं होता, उसमें चेतना नहीं है। अन्यथा पूरे शरीर में चेतना है, चाहे आप सिर सिर को कोई व्यक्ति अगर नोचे या पैर को नोचे तो सिर से लेकर पैर तक सब जगह चेतना है। इसका मतलब क्या हुआ? ये न सर्वमिदम ततम का मतलब कि जो जीवात्मा है वो संपूर्ण शरीर में अपनी चेतना के द्वारा व्याप्त है। आगे किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है, ठीक है ना? जो मेरी चेतना है मेरे शरीर में सीमित है, आपकी चेतना आपके शरीर में सीमित है, और ये शरीर भी जब छोटा था मेरा तो चेतना उतने शरीर में थी, और अभी शरीर बड़ा हो गया तो चेतना उतने शरीर में है, है ना? लेकिन अपने शरीर में ही व्याप्त है मेरी चेतना, आपके शरीर में व्याप्त नहीं है। एकदम, तो एकदम का मतलब क्या हुआ? शरीर, ये शरीर। आगे एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। अब कैसे इसको समझा जाए कि भाई मेरी चेतना मेरे शरीर में है आपके शरीर में नहीं है, कैसे समझा जाए? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, अगर आपको चोट लग जाती है तो मुझे तो दर्द नहीं होता, है कि नहीं? इसका मतलब है कि मेरी चेतना आपके शरीर में नहीं है। ये दूसरी चीज है, अगर मान लीजिए आप कुछ खट्टा या मीठा खाते हैं तो मुझे तो स्वाद का अनुभव नहीं होगा, इसका मतलब है कि मेरी चेतना आपके शरीर में नहीं है। तो हर जीव की चेतना अपने अपने शरीर में है, इसलिए ये नहीं सोचना कि यहाँ पर ये न सर्वमिदम तदम का मतलब कि पूरा जगत जिससे व्याप्त है वो नहीं है। यहाँ पर जो लोग इस तरह का अर्थ निकालते हैं आज के श्लोक का कि उसको बिना से समझो जिसके द्वारा इस संपूर्ण जगत व्याप्त है, तो वो नहीं है आज के श्लोक में, क्योंकि इसके पहले भी भगवान जो बात कर रहे हैं वो शरीर और जीवात्मा की बात कर रहे हैं। आगे फलतः प्रत्येक शरीर में दृष्टि आत्मा है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण दृष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। ये दृष्टि आत्मा है, मतलब परमात्मा नहीं, दृष्टि आत्मा मतलब जीवात्मा। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा है, है? और उसका लक्षण चेतना द्वारा परिलक्षित होता है, जैसे कि सूर्य है, सूर्य को अगर आप नहीं भी देखते, कभी बादलों में छिपा हो है? या मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं, दिन का समय है, तो यहाँ छत बंद होने के कारण आप सूर्य को नहीं देखते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश फिर भी आप देख करके आप सूर्य की उपस्थिति समझ सकते हैं कि सूर्य है, आकाश में सूर्य है। क्यों? सूर्य का प्रकाश आप देख रहे हैं, है ना? तो जरूरी नहीं है कि सूर्य को देखने के लिए आप को जो है आमने सामने ही देखना पड़े। आप सूर्य को ऐसे भी देख सकते हैं या समझ सकते हैं उसके प्रकाश के द्वारा। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है शरीर के अंदर, यद्यपि हम उसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम फिर भी समझ सकते हैं कि है। कैसे? चेतना के द्वारा। जैसे सूर्य अस्त हो जाए तो सूर्य का प्रकाश भी धीरे धीरे चला जाता है। सूर्य चला जाता है तो सूर्य का प्रकाश भी धीरे धीरे चला जाता है, फिर रुकेगा नहीं सूर्य का प्रकाश। कि आप रोकें सूर्य के प्रकाश को तो रोक नहीं सकते हैं, चला जाएगा। इसी प्रकार से जब जीवात्मा निकल जाता है शरीर से, तो धीरे धीरे चेतना भी चली जाती है, फिर चेतना नहीं रहेगी इस शरीर में। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यस्ति चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में 5वां इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्र शतभागश्च शतधा कल्पित सचा भागो जीवः सविज्ञयः सचानन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है कि साग्र शतभागश शतांश सादृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूप वयम संख्यातीतो हि चित्कण। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर हैं। तो प्रभुपाद 2 श्लोक उद्धृत कर रहे हैं शास्त्रों से, जिससे पता चलता है कि जीवात्मा इतना छोटा है तो ये जो है व्याप्त नहीं है हर जगह, हर जगह ये जीवात्मा व्याप्त नहीं हो सकता है। आगे इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। ये अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है कैसे? छोटी सी दवाई, छोटी सी गोली होती है, आप खा लेते हैं, पूरे शरीर में जो दर्द है उसको आराम होता है, जबकि छोटी सी दवाई है कि नहीं? तो ऐसी बहुत सी दवाइयां होती हैं जो थोड़ी सी मात्रा होती है, एक बूंद दी जाती है और एक बूंद से ही जो है ना आपके पूरे शरीर में प्रभाव डालता है। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है उसका प्रभाव पूरे शरीर में है, जबकि जीवात्मा का आकार बहुत छोटा है। आत्मा की यह धारा यानी विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। तो प्रभुपाद जी बार बार इसी बात को समझा रहे हैं कि पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त नहीं है, बल्कि क्या व्याप्त है? आत्मा की चेतना व्याप्त है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। तो यह बात बिल्कुल सही है, अगर चेतना नहीं रहेगी इस भौतिक शरीर में तो फिर क्या होगा? कोई कितना भी इसको नोचे, हाथ पैर कुछ भी करे, लेकिन फिर कुछ नहीं होने वाला और किसी भौतिक उपाय से नहीं लाया जा सकते। जैसे वैज्ञानिक लोग हैं कहते हैं वो जीवात्मा को नहीं मानते कि जीवात्मा निकल गया शरीर से। इतना बड़ा साइंस, इतना बड़ा विज्ञान है, लेकिन इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि शरीर के अंदर जीवात्मा है और शरीर मरता कैसे है जीवात्मा छोड़ के चला जाता है तब शरीर मरता है। वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, नहीं उसमें कुछ केमिकल की कमी हो गई है। अगर केमिकल की कोई कमी हो गई है तो केमिकल डाल करके जिंदा कर लो उस शरीर को। प्रभुपाद ने साफ कहा, प्रभुपाद ने चुनौती दी कि तुम लोगों के विज्ञान में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें कि जिंदा शरीर और मरे हुए शरीर में अंतर का अध्ययन किया जाए। क्या अंतर है बताओ, एक जिंदा शरीर है एक मरा हुआ शरीर है, क्या अंतर है? अगर तुम कोई चीज कहते हो कि कोई चीज की कमी है तो उस कमी को पूरा करो, जिंदा करो, चेतना वापस नहीं आ सकती। जैसे कि सूर्य जब अस्त हो गया तो सूर्य का प्रकाश वापस नहीं ला सकते आप, जब सूर्य उदय होगा तभी सूर्य का प्रकाश आएगा, नहीं तो नहीं। उसी प्रकार जीवात्मा के बिना चेतना आप नहीं ला सकते। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जो चेतना है ये पदार्थ से उत्पन्न होती है, चेतना पदार्थ से उत्पन्न होती है, लेकिन कभी उन्होंने चेतना को पैदा नहीं किया पदार्थ से। आप सुन रहे हैं, कोई भी चीज है उसमें कोई चीज मिला करके उसको चेतन नहीं बना सकते, इसको जिंदा नहीं कर सकते। कोई चीज डाल करके जमा ली, लकड़ी का या कपड़े का कोई खिलौना या गुड़िया है वो बना करके, गुड़िया बना करके उसमें कोई चीज डाल दो तो जिंदा हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो चेतना वो बना नहीं सकते, लेकिन तो भी उनका जो ना दुराग्रह है, वैज्ञानिकों का दुराग्रह है कि नहीं चेतना जो है पदार्थ से उत्पन्न होती है। ये बहुत ही गलत दुराग्रह है और लोग जो है इन वैज्ञानिकों को बड़ा महत्व देते हैं। क्यों महत्व देते हैं? क्योंकि उनकी बनाई हुई ये सब जो है ना, जो बिजली की व्यवस्था है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, उनके बनाए हुए सब चीजें हैं जैसे पंखा है और हीटर है कूलर है, तो चूंकि हम लोग उनके बनाए हुए इन सब सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं इसलिए उनकी हर बात को हम आंखें बंद करके मान लेते हैं। लेकिन नहीं, वो कुछ भी सुख और सुविधा क्यों ना प्रदान करें लेकिन अगर कोई गलत बात बोले तो हम क्यों माने? क्यों माने? अगर आप मुझको 10,000 रुपया दे दोगे तो क्या मैं आपकी हर बात मान लूंगा? आप जो कुछ भी कहोगे मैं मान लूंगा? नहीं, कैसे मानू? तो वैज्ञानिकों ने मान लीजिए कि सब कुछ किया, बहुत कुछ सुख और सुविधाएं प्रदान की आज के समाज को, लेकिन एक बात में ये बहुत गलत है, बहुत गलत है और ये बिल्कुल दुराग्रह है, क्योंकि वो कभी पैदा नहीं कर सकते चेतना को जिंदा, कोई भी चीज जिंदा नहीं बना सकते। एक मच्छर है ना, छोटा सा मच्छर है वो नहीं बना सकते वो अपनी प्रयोगशाला में है? एक मच्छर है, मक्खी है, वो भी नहीं बना सकते। यहां तक कि जो घास की एक पत्ती है वो भी नहीं बना सकते, घास की एक पत्ती भी नहीं बना सकते अपनी प्रयोगशाला में। ये तो भी उल्टा जो है दुराग्रह, बिल्कुल गलत दुराग्रह है उन लोगों का। इस समय में प्रभुपाद ने एक कथा बताई थी दो बंगालियों की। तो ऐसा माना जाता है कि जो बंगाली लोग हैं वो किसी बात में अड़ जाते हैं, है ना, कोई बात। तो सड़क में चल रहे थे दो बंगाली, तो रास्ते में कुछ कागज की दुकान मिली, तो एक बंगाली बोला कि देखो कागज है, अब ये काटते कैसे हैं? काटते कैसे, कागज को कैसे काटते हैं? ये कहते हैं चाकू से काटते हैं। उसने बोला नहीं, कैंची से काटते हैं। तो वो कहते नहीं चाकू, वो कहते नहीं कैंची। बहुत दूर निकल गए, लेकिन वो कागज के काटने की बात पर वो दोनों जो है ना कहते चाकू, वो कहता कैंची, फिर कहता वो चाकू, वो कहता नहीं कैंची। तो झगड़ा हुआ दोनों में। जब झगड़ा हुआ तो आगे चल कर क्या था कि नदी पड़ी, तो नदी के किनारे वो जो है झगड़ा कर रहे थे दोनों, और वो कहता चाकू, कहता कैंची, चाकू कैंची, चाकू कैंची, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो फिर जो चाकू वाला था, जो चाकू बोल रहा था, उसने कैंची वाले को धक्का दिया तो नदी में उसको गिराया। अब नदी में वो जो है डूबने लगा, जब डूब रहा था तो डूबते डूबते भी उसने अपना हाथ किया कैंची। कि वो स्वीकार नहीं कर रहा है उसकी बात को और डूब रहा है पानी में, लेकिन तो भी कह रहा है कैंची, वो हाथ उंगलियों के निशान बना रहा है कैंची कैंची। मतलब कहने का ये है कि इतना दुराग्रह है, इतना दुराग्रह है अपने कोई भी बात को पकड़ने का कि वो जो है देख नहीं रहे कि वो डूब रहा है, अपने को वो बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, डूब रहा है। बात नहीं। इसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं और अपने को अपनी चिंता नहीं कर रहे कि कैसे अपने को बचाएं जन्म मरण के चक्कर से, और दुराग्रह यही कर रहे हैं कि चेतना पदार्थ से पैदा होती है, अपने को पदार्थ मानते हैं। कितना अज्ञान है, इतना साइंस विकसित हो चुका है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या मानते हैं कि हम खत्म हो जाएंगे। इतने शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन क्या सोचते हैं कि जन्म के पहले वो नहीं थे और मरने के बाद वो नहीं रहेंगे। कितना घोर अज्ञान है ना। और भगवान गीता में बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं कि ये नष्ट नहीं हो सकता कभी। आज के समय में भगवान कह रहे हैं कि ये नष्ट नहीं हो सकता कभी, इसके अंदर पैदा भी नहीं हो सकता, आप पैदा नहीं कर सकते। जो जीवात्मा है ना तो पैदा होता है और ना नष्ट होता है, चेतना भी पैदा नहीं होती और ना नष्ट होती है। ये तो आती है, जब जीवात्मा आता है तो चेतना आ जाती है शरीर में, और जब जीवात्मा चला जाता है तो चेतना भी चली जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, ना तो पैदा होता है और ना नष्ट होता है। जब सूर्य आता है तो सूर्य का प्रकाश आ जाता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश भी चला जाता है। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 3:19 सूक्ष्म में परमाणविक आत्मा की ओर और अधिक विवेचना हुई है। ये शुण आत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन प्राण पंचधा संविवेशन प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन विशुद्धे विभवत ये से आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, यीशु भी कहा गया यीशु अणु आत्मा। अणु अणु का मतलब समझे, बहुत छोटा, मतलब आत्मा सर्वव्यापी नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा है ये न सर्वमिदं ततम, कि जिससे कि ये सब कुछ व्याप्त है, जो है इससे ये पूरा ना तो जगत व्याप्त है ना शरीर व्याप्त है, जो जीवात्मा है, जीवात्मा बहुत छोटा है। इसलिए समझने की कोशिश करो कि भगवान ने जब कहा है कि इसके द्वारा जीवात्मा के द्वारा सब कुछ व्याप्त है, इसका मतलब संपूर्ण शरीर व्याप्त है, और किस प्रकार से चेतना के रूप में आत्मा नहीं है। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है, प्राण अपान व्यान समान तथा उदान। ये हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमस से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। तो ये प्रॉपर समझा रहे हैं, हठ योग का मतलब ये होता है आत्मा जो कि शरीर में बंधा हुआ है, उसको छुड़ाया जाए, है ना। तो हठ योग की विधि के द्वारा कोई व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करने में सहायता प्राप्त करता है। लेकिन जब हम श्रवण करते हैं भगवान के नामों का, भगवान के गुणों का, तो जैसी शुद्धि होती है श्रवण के द्वारा, वैसी शुद्धि हठ योग के साधन से नहीं होती। आगे इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणुआत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। ये प्रभुपाद ने बता दिया कि विष्णु तत्व जैसे सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है, तो ये आत्मा वैसा नहीं है। अगर ऐसा आप आत्मा को सोचते हैं, जीवात्मा को, तो क्या है ये? मूर्खता। जीवात्मा सर्वव्यापी नहीं है। आगे, अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार ये अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ ये अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। तो ये बात है, उनके सूक्ष्मदर्शी यंत्र कितने भी छोटे क्यों ना हो, इन जीवात्मा को नहीं नाप सकते हैं। जीवात्मा का आकार बहुत छोटा है। बाल की नोक ही सोचो, बाल की नोक ही नापना मुश्किल है। बाल की नोक को आप नाप नहीं सकते, फिर उसका भी 10,000वां हिस्सा है, छोटा, इतना छोटा। तो इसलिए अगर वो नाप नहीं सकते तो कहते हैं कि नहीं है। लेकिन जो शास्त्र है ना, तो इनमें कोई दोष नहीं, किसी प्रकार का दोष नहीं है। हमारे ज्ञान में 4 प्रकार के दोष हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणपाटो। अब करणपाटो का मतलब क्या है कि इंद्रियां हमारी सीमित हैं, और सीमित इंद्रियों के कारण हम बहुत छोटी चीज को नहीं देख पाते। शास्त्र में भी, शास्त्र में ये दोष नहीं है। शास्त्र हमको जानकारी देते हैं कि जीवात्मा इतना छोटा है, क्योंकि ये शास्त्र मनुष्य के द्वारा बनाए गए नहीं है। जैसे आजकल का विज्ञान है, ये प्रयोगों पर आधारित है। ऐसे किसी व्यक्ति ने प्रयोग करके ये बातें नहीं लिखी हैं शास्त्रों में कि जीवात्मा बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है। नहीं, ये शास्त्र हैं, ये क्या है, अपौरुषे, मतलब मनुष्यों के द्वारा निर्मित नहीं है ये शास्त्र। इसलिए कोई अगर बहुत छोटी भी चीज है और शास्त्रों में लिखी है तो आपको मानना पड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी प्रकार की मशीन के द्वारा या सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखना पाए, लेकिन शास्त्र बताते हैं तो आपको मानना पड़ेगा। आगे, दृष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जीवात्मा परमात्मा के साथ शरीर में कहां पर है? हृदय में है? क्यों? इस तरह की भी कहीं उपमा की गई है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षे, है ना, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। मतलब एक ही वृक्ष में दो मित्र पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं, है ना। तो अगर ये शरीर की तुलना वृक्ष से की जाए तो जो हृदय है ये, इसकी तुलना की जाएगी घोंसले से, और हृदय के घोंसले में दो पक्षी हैं, जीवात्मा और परमात्मा, दो हैं, तो ऐसा शास्त्र में बताया गया है। आगे, और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। आप सोचिए, हृदय में ही जो है शक्ति आ रही है पूरे शरीर के लिए, पूरे शरीर में जो खून जा रहा है, खून बह रहा है पूरे शरीर में, है? उसको गति कहां से मिल रही? हृदय से मिल रही है। जितना खून है वो कुछ नाड़ियों के द्वारा हृदय में आता है, और वहीं पर हृदय में छन करके और पंप के द्वारा उसको जो है ना तेजी से प्रेशर के साथ पूरे शरीर में भेजा जा रहा है। पंपिंग, पंपिंग इधर हृदय में हो रही है। सोचो, जैसे कि पंप होता है ना, है ना, अब मंदिर का भी एक पंप है, जब पंप चलाते हैं तो ऊपर काफी ऊंचाई पर रखी हुई टंकियां हैं, वो भर जाती हैं पानी से। अब नीचे से पानी ऊपर थोड़ी आएगा, लेकिन पंप चल रहा है उस फोर्स के द्वारा जो पानी है वो ऊपर उठता है, और कितने कितने टंकियां भरती हैं उसके द्वारा। उसी प्रकार से खून भी पूरे शरीर के सब भागों में कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। और बहुत पतली पतली भी नाड़ियां हैं, लेकिन पूरे शरीर में कैसे जाएगा? तो कहीं ना कहीं तो पंपिंग हो रही है, खून का जो पंप है वो कहां पर है? हृदय में। और वो जो शक्ति है, कौन व्यक्ति है जो इसको पंप कर रहा है? वो जीवात्मा है, वो जीवात्मा है। तो इस बात को समझो, कई बार बता रहे हैं। और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्तगण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त उत्पादक संलयन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। तो ये बात वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि खून शुद्ध हो रहा है हृदय में, और शुद्ध खून पूरे शरीर में जा रहा है, और तभी ताकत आ रही है। जैसे हाथ है, अगर काम करते करते अगर थक जाता है, तो वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं कि भाई काम करते करते थक गया इस हाथ में, और इस हाथ में अभी नया खून नहीं आ पा रहा है उतनी जल्दी, इसलिए हाथ थक गया है। जो हृदय में जो नया खून, जो शुद्ध हो रहा है खून, वो शुद्ध खून चूंकि इतनी जल्दी नहीं आ पाया, और आप काम कर रहे हैं लगातार, तो हाथ क्या हो गया? थक गया। तो इतना तो स्वीकार कर रहे हैं कि भाई नया खून बन रहा है, पुराने खून से नया खून बन रहा है, और यहां पर ही इतनी शक्ति आ रही है नए खून में कि वो इधर भी जा रहा है, इधर जा रहा है, सब जगह जा रहा है। लेकिन ये शक्ति कहां से आ रही है, इसका कोई उत्तर नहीं उनके पास, वैज्ञानिकों के पास इसका उत्तर नहीं है। ये शक्ति कहां से आ रही है?